आज इस प्रार्थना में हम श्री शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इसका अर्थ इस प्रकार से है, श्री कृष्ण संकीर्तन का पूर्ण गौरव हो, इस संकीर्तन से हृदय की शुद्धि होती है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाती है। पूर्ण मानव जाति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ वरदान है, क्योंकि इससे पवित्रता और भाग्य का उदय होता है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का यही सार है, दिव्य आनंद का अनुभव इससे प्राप्त होता है और इस आनंद के सागर में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जिस आनंद को पाने के लिए हम सदैव उत्सुक हैं, वो दिव्य आनंद हमें इस संकीर्तन से सहज प्राप्त होता है। तो भगवान के दिव्य नाम का गौरव इस पहले श्लोक में किया गया है। इसका प्रार्थना का नाम है शिक्षा अष्टकम। ये 8 श्लोक मनुष्य जाति के लिए शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और विशेष गौर करने की बात ऐसी है कि शिक्षा केवल इस प्रकार की शिक्षा, दिव्य शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा केवल मनुष्य जाति के लिए मुमकिन है और कोई भी जाति में इस प्रकार की शिक्षा नहीं हो सकती है। अगर जानवर को भी हम शिक्षा देते हैं तो वो कसरत करने के लिए, सामान ढोने के लिए, हमारा काम करने के लिए, अलग अलग प्रकार खेती करने के लिए, घुड़ दौड़ करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेनिंग सबको मिलती है, लेकिन वो भौतिक शारीरिक होती है, खास करके मानसिक स्तर पर पहुँच सकती है। जानवर को हमें अगर रेस के लिए तैयार करना है तो उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ट्रेनिंग जो है वो केवल मनुष्य के लिए है। सभी जीवों के लिए जन्म मृत्यु निश्चित है, हर जीव मृत्यु प्राप्त करता है, जन्म प्राप्त करता है, बुढ़ापा, बीमारी सब मिलता है हर जीव को। लेकिन इसके ऊपर जाकर मनुष्य जीव को भगवान क्या है, हम कौन है, हमारा और उनका रिश्ता क्या है और वो रिश्ता कैसे जोड़ना है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान का ये प्रथम चरण है जिसमें कहा गया है कि केवल मनुष्य के लिए, उसके उद्धार के लिए भगवान ने ये रास्ता दिया है कि अपना नाम अर्पण किया है। इस नाम के माध्यम से मनुष्य शरीर में जीता हुआ जो जीव है वो तत्क्षण भगवान से संपर्क कर सकता है और कोई भी जीव इस तरह से उनको फैसिलिटी नहीं दी गई है। केवल मनुष्य को ये सुविधा दी गई है कि वो नाम पुकारते ही भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है। प्रभुपाद जी इसके आगे जाकर कहते हैं कि प्राणी भी भगवान के नाम से अपने आप को भगवान को जोड़ सकता है, लेकिन प्राणी अपने आप भगवान के नाम को पुकार नहीं सकता। अगर हम उसके लिए पुकारेंगे तो प्राणी भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो प्रिविलेज है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण लाभ भगवान ने दिया है मनुष्य को कि भगवान का नाम मनुष्य पुकार सकता है। तो अगर हमें जानवरों का जो जीवन है उसमें क्या होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो आहार के लिए काम करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, कोई संकट आया तो रक्षा करते हैं, अपनी भय से अपने आप को बचाते हैं और अपने प्रजा को बढ़ाते हैं, प्रजा उत्पादन करते हैं। मनुष्य भी वही करता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मनुष्य को अगर मनुष्य कहना है तो फिर उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि वो सुविधा जो है वो केवल इस शरीर में दी गई है। इसलिए अगर हमें मनुष्य के स्तर पर जीना है तो भगवान का नाम को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर हम मनुष्य के नाम को छोड़कर, भगवान के नाम को छोड़कर अगर हम जीते हैं तो हम धीरे धीरे जानवरों के स्तर पर अपनी अधोगति कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम ये कार्य कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे जानवरों के स्तर पर जीने लगे हैं, और अगर हम ये समझते हैं, क्योंकि समझने का अधिकार भी मनुष्य को ही दिया है कि हम कहाँ हैं, कौन से स्तर पर हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ हमारी प्रगति है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये केवल मनुष्य के लिए दिया गया है। मैं बार बार इस बात को इस छोटी सी कथा में दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है। छोटा सा है लेकिन बहुत कीमती है, क्योंकि इसी छोटे से जीवन में हम परम भगवान से संपर्क कर सकते हैं और उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। केवल मनुष्य के जीवन में ये ब्रह्म मुहूर्त, ये संध्या का मुहूर्त और दोपहर का समय और रात का शयन समय और राक्षस प्रहर, ऐसे वर्णन किया गया केवल मनुष्य के जीवन के लिए है। कुत्ता बिल्ली के लिए कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त क्यों बनाया गया है कि इस काल में मनुष्य भगवान को पुकारता है तो बड़ी आसानी से उनसे संपर्क कर सकता है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं, वाचा बोलने की सुविधा, ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा केवल मनुष्य के लिए बनाई गई है। देवताओं का जीवन भी इतना श्रेष्ठ नहीं जितना मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं के जीवन में इतना भोग है कि उस भोग में वो लिप्त हो जाते हैं और ये परिणाम कारक रीति से भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन सभी योनियों में देवताओं तक मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ऐसी सुविधा बना के रखी है कि इतना भोग नहीं है, काफ़ी सारा दुख है और वो दुखों की अनुभूति करते हुए बहुत ही परिणामकारक रीति से इफेक्टिवली हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए देवता लोग भी, हम सबको ये जानकर खुशी होनी चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है कि देवता लोग भी कलयुग में मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लाइन में खड़े रहते हैं। उससे भी खास करके जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेने के लिए जिनको वैष्णव कहते हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। क्योंकि लाखों सालों की जिंदगी में तपस्या करने से 70-80 साल की जिंदगी में भगवान का नाम लिया तो वही परम लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य जीवन का गौरव जितना करें उतना कम है, क्योंकि इसमें वो सुविधा है जो अन्य किसी जीव में नहीं है, किसी भी योनि में नहीं है। भगवान ने बड़ा प्रेम से ये 84 लक्ष योनि के चक्र के अंदर एक ऐसा एक दरवाज़ा रखा है निकलने के लिए, बाहर निकलने, आउटलेट बोलते हैं उसको, निकास, इस दुख भरे जीवन से पुनः पुनः जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त होने का एक निकास जो है वो मनुष्य जीवन है। और ये निकास किस लिए है? दुख से निकास, कष्ट से निकास, दुख से और कष्ट से और पीड़ा से मुक्ति का ये दरवाज़ा है। तो आइए हम सब मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो पहला श्लोक है, श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका संदेश अपने जीवन में उतारें और अपने मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्णतः सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सवेरे की प्रार्थना में उपस्थित रहें।